ಶ್ರೀಗುರುದೇವ ಜಯ ಶುಭದ್ರ
ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಜಯ ಜಯ ಸುಭದ್ರ
ನೀತೈ ಗೌರ ಹರಿವ ಹರಿವ ಹರಿವ
ಹೃದಯ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಹರಿ 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 ಬೋಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೇ ಭಾಗ ಲೀಜಿ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾ ತದಾಲ್ಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದ ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾ ಅಮೃತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಅಪಾರ ಕೃಪಾ ಸೇ ಅವಂತಿಕಾ ಉಜ್ಜಯಿನ್ ನಗರಿ ಮೇ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಂದಿರ ಕೆ ಓರ್ ಸೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ್ ಸುಭದ್ರಾ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸಹಿತ ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೆ ಸಾತ್ ಸಾತ್ ದಿನ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಕಾ ಭಗವತ್ ಅಮೃತ ಗೀತಾ ಅಮೃತ ಕಾ ಜೊ ಉತ್ಸವ ರಖಾ ಗಯಾ ಇಸ್ಮೇ ಆಪ್ ಸಬ್ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಇಸ್ ವರ್ಷ ಗೀತಾ ಅಮೃತ ಕೆ ಮಧ್ಯ ಛೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಸ್ಕಾ ಶ್ರವಣ ವರ್ಣನ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ಸಾತ್ವೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಸುಬಹ ಆರಂಭ ಕಿಯಾ ಥಾ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಭಗವತ್ ಜ್ಞಾನ ತೋ ಭಗವತ್ ಜ್ಞಾನ ಕೌನ್ ದೇ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಯೇ ಪಹಲಾ ಪ್ರಶ್ನ ಹೈ
भगवत ज्ञान सिवर भगवान ही दे सकता है। अगर भगवान आके धरती के ऊपर अपने बारे में नहीं बताएं तो हम भगवान के विषय में कल्पना ही करते रह जाएं कि भगवान ऐसा होगा, भगवान ऐसा होगा। तो भगवत ज्ञान केवल भगवान ही दे सकते हैं। और एक बार भगवान जब भगवत ज्ञान देते हैं तो फिर वो अपनी परंपरा को स्थापित करते हैं, पुनः वो भगवत ज्ञान परंपरा के द्वारा मिलेगा। ये भगवत ज्ञान की प्राप्त करने की विधि है, जो चौथे अध्याय में प्रमाणित रूप से इस श्लोक में आई है। एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदुष काल सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप। भगवान कहते ये मैंने दिव्य ज्ञान, भगवत संबंधी ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने मनु को, विवस्वत मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और फिर ये पृथ्वी के ऊपर मानव समाज में ऐसे राज ऋषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। तो दिया किसने? मैंने दिया। तो भगवान अपने विषय में ज्ञान देते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है, और फिर आगे दूसरे श्लोक में आएगा विज्ञान, यहां ज्ञान की परिभाषा सातवें अध्याय में है भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान। जहां ज्ञान शब्द है उसका अर्थ भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान। भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान का मतलब भगवान क्या क्या चमत्कार है, भगवान के क्या भगवान की शक्ति है, क्या भगवान का महत्व, भगवान की शक्तियों का क्या महत्व है। तो जो ज्ञान शब्द है इस श्लोक अध्याय में उसका अर्थ हमारे आचार्यों ने लिखा है, ज्ञान का अर्थ लिखा है भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ लिखा है भगवान का माधुर्य ज्ञान। माधुर्य ज्ञान का मतलब है कि भगवान कितना मधुर है, उनकी लीलाएं तो भगवत गीता में नहीं है, लेकिन उनके मधुर भक्तवत्सल भाव का दर्शन जो है नवें अध्याय में है। तो सातवें अध्याय में विशेष रूप से भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, और ये ऐश्वर्य ज्ञान से क्या हमारा भगवान से प्रति, भगवान के प्रति हमारा क्या भाव होता है, ऐसे सामान्य भाषा में कहते हैं जहां चमत्कार होता है वहीं नमस्कार होता है। ऐश्वर्य का मतलब है चमत्कार, भगवान के चमत्कार। तो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान की महिमा, भगवान की चमत्कार, भगवान की शक्तियों का जो प्रभाव है उसको जानने से भगवान के प्रति हमारा आदर भाव, सेवा का भाव, और भगवान के शरणागति का भाव ये प्रकट होगा। तो चमत्कार से नमस्कार की ओर हम आगे बढ़ेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, और नमस्कार भगवान की भक्ति का एक अंग है। आगे भगवान कहेंगे मुझे नमस्कार करो। तो पहले श्लोक में सुबह ये चर्चा हुई है, सर्वश्रेष्ठ योग जिससे भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए, उसमें क्या करना चाहिए। सामान्य कुछ लोग कहते हैं गीता को उल्टा कर तो करो तो त्याग हो जाएगा, तो गीता में त्याग लिखा है, लेकिन गीता का प्रवक्ता, गीता को बोलने वाला श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में त्याग नहीं है, गीता में आसक्ति है। मैं आसक्त मन है, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त करो, कहां अनासक्ति है, कहां त्याग है, मुझ में मन आसक्त करो। इस दुनिया में सब आसक्ति में बंधे हुए हैं, दुनिया के अंदर जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसने बंधन का कारण दुनिया का बना दिया है, और भगवान ने उसी चीज को संसार से मोड़ के भगवान की ओर करने से वो हमारे को भगवान के जानकारी के रास्ते में परम साधन बन जाएगा। मैं आसक्त मनहा पार्थ, मुझ में आसक्ति करो, तुम्हें चाहना है तो मुझे चाहो, प्रेम करना है तो मुझे मुझसे करो, तो आसक्ति और आसक्ति करते किस चीज से हम, आसक्ति का हमारे पास कौन सा हमारे शरीर में अंग है जिससे हम आसक्ति करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभा से चखते हैं, इंद्र त्वचा से स्पर्श करते हैं, लेकिन आसक्ति किससे होती है? आसक्ति होती है मन के स्तर के ऊपर, मन किसी में आसक्त होता है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मन मुझ में आसक्त करो, जो मन तुम्हारा संसार के विषयों में आसक्त है वहां से हटा के मेरी ओर लेकर आओ। बोला सिर्फ आपकी ओर मन ले गया है तो काम हो जाएगा? बोला नहीं होगा, सेवा करो, योगम युन्यम, सेवा करो। मन मेरी ओर लाने का साधन क्या है पूछा? बोला मेरी सेवा करो। जहां सेवा करोगे वही मन जाएगा, जहां सेवा करोगे वहां तुम्हारा मन जाएगा। बोला सिर्फ सेवा तो नौकरी करते हैं वहां भी हमारा, हम सुबह सुबह उठ के भागते हैं नौकरी के लिए। बोला नहीं नहीं, वहां नौकरी जिसकी करते हो उसका शरण थोड़ी लेते हो, तुम मेरा शरण भी ले लो। शरण ले लो का मतलब है कि मुझे अपना सर्वस्व मान लो। तो ये तीन बातें कह दी, मन मुझ में लगाओ, मेरी सेवा करो और मेरा आश्रय लो। असल में ये भक्ति का सूत्र है, ये भक्ति का सूत्र है कि मन से मुझे पाने की इच्छा रखो, प्रेम मुझसे करो। अब किसी से कोई हम प्रेम करते हैं तो कैसे दिखाएंगे दुनिया को हम आपसे प्रेम करते हैं? प्रेम का प्रदर्शन केवल सेवा से होता है। हम किसी की से प्रेम करते हैं वो हम कैसे दिखाएंगे? जब सेवा करेंगे। सेवा से प्रेम प्रकट रूप से देखने में आता है। तो शरणागति कैसे दिखाएंगे हम? बोले प्रेम, प्रेम है तो सेवा करेंगे। ये तीन काम करने से हमें मिलेगा क्या? तब भगवान कहते आपको मिलेगा समग्रम माम असंक्षम ज्यासी, जानोगे मेरे विषय में पूर्ण जानोगे, कोई संशय नहीं रहेगा। ये तीन चीजें भगवान को पूर्ण रूप से जानने का साधन है। हमारा काम क्या होता है? हम शरण लेते हैं घरवाली का और मन लगाते हैं पैसे में और सेवा करते हैं सेठ की। हमारे तीन जगहों पे हम टांगे हुए हैं। शरण लिया है हमने, वो एक आदमी जा रहा था बाहर तो एक घर के सामने बार बार माथा टेक रहा था। तो हमने पूछा भाई ये मंदिर है कोई? शंकर जी का मंदिर है भोलेनाथ बुरन है? तो दुर्गा जी का है? नहीं। तो राम दरबार है? नहीं। अरे भाई राधा कृष्ण का मंत्र है? नहीं। मंदिर है? नहीं। तो फिर माथा क्यों टेक रहे? बोला मेरा ससुराल का घर है, यहां से मेरे को टीवी बीवी सब यहीं से मिला है, मैं तो यहीं का शरण लेके रखा है। तो ये जो शरण है, शरण लिया है टीवी बीवी का और सेवा कर रहे हैं सेठ जी की जो पैसा देता है, और मन लगा हुआ है पैसा आएगा घर बनाऊंगा गाड़ी लूंगा, ये तो तीन जगहों पे टांगा हुआ है। तो वो भगवान को कहां से जानेगा? वो अपने आप को ही नहीं जान पाएगा तो धन संसार को भी नहीं जान पाएगा। तो भगवान कहते मन भी मुझ में, सेवा भी मेरी और शरण भी मेरा। तब आपको लाभ क्या होगा? मेरे विषय में पूरी जानकारी होगी, कोई संशय नहीं रहेगा। तो ऐसी जानकारी कैसे होगी? तब भगवान ने सूत्र बता दिया कि शरणो, उसके बारे में तुम मुझसे सुनो, मुझसे सुनो और इसके बाद मेरे परंपरा में आए हुए गुरुजनों से सुनो। सुनना क्या है? भक्ति का एक अंग है। तो भगवान को कैसे जाना जाता है? भगवत गीता में भगवान कहते भक्त्य माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मैं जाना जाता हूं। और भक्ति के प्रहलाद महाराज ने नौ अंग बताए हैं और उनमें से मुख्य और पहला अंग है श्रवण। तो भगवान कहते हैं आप श्रवण करो। और यहां शब्द संशय आया है और श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में इस श्लोक के भावार्थ में श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से भक्ति का जो साधन है वो बताया है। कि भगवान सुनना क्या चाहिए। सुनवताम स्वकथा कृष्ण, सुनना चाहिए भगवान श्री कृष्ण से मुख के मुख से निकली हुई कथा, क्या भगवत गीता। बोला क्या होगा था? पुण्य श्रवण कीर्तन है, जीवन में पुण्य का उदय हो जाएगा। तो इससे लाभ क्या होगा? भगवान में, भगवान की भक्ति में निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा का अर्थ यह है कि यही रास्ता मेरे को भगवान के पास ले जाएगा, ये रास्ते पे जा रहा हूं यही सही रास्ता है, और किसी रास्ते की जरूरत नहीं है, ऐसा निष्ठा आ जाए। और फिर क्या होगा? फिर बोला तमोगुण और रजोगुण, काम और लोभ समाप्त हो जाएगा। फिर सत्वगुण में स्थित हो जाओगे, और फिर जो संसार के अंदर अहंकार की गांठ पड़ी हुई है ये छिन्न भिन्न हो जाएगी, संशय नाश हो जाएंगे। और यहां लिखा है असंक्षम, और वहां भी लिखा है संशय नाश हो जाएगा, अहंकार की गांठ कट के छिन्न भिन्न हो जाएगी, और अपने आत्मा का दर्शन हो जाएगा, अपने अपनी पहचान हो जाएगी। सूर्य उगता है तो अपने आप को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं और संसार को देखते हैं। ऐसे भगवान के साक्षात्कार के अंदर आत्मा का साक्षात्कार भी है और जगत का भी दर्शन हो जाता है, और आपस में तीनों का संबंध क्या है यह भी पता लग जाता है। असल में इसके आगे वाले श्लोक में यह आएगा, तीन ही तत्व है, जीव जगत जगदीश। जीव ये है, जीव आत्मा जो चेतन है, जगत ये है जड़ प्रकृति। जीव जगत और जगदीश मतलब इन दोनों का स्वामी, जगत का ईश, जीव और जगत दोनों का ईश, ईश्वर। तो तीन चीजों का तत्व आपको समझ में आएगा। प्रभुपाद जी इसको भगवान न कर कहते हैं, परम सत्य का पता लगेगा। यू विल नो द एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब परम सत्य, जिसके ऊपर बाकी सब सत्य आश्रित हों। और परम सत्य में जीव आता है, जगत आता है और जगदीश आता है, ये सारे के सारे परम सत्य का अंग है। तो आप मेरे बारे में पूर्ण रूप से जान लोगे, तीन काम करो, मन मुझ में आसक्त करो, मेरी सेवा करो और मेरा शरण लो। अब दूसरे श्लोक का आप पाठ कीजिए हमारे साथ, आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। बोलिए, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अविशिष्यते। अब भगवान कहते ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञान ते अहम सविज्ञानम, मैं जब भगवान मैं कहते हैं तो अपने छाती के ऊपर उंगली ऐसे करते हैं। अर्जुन, सुबह हमने आप ये चर्चा की थी कि भगवान ने कहा पार्थ, तब तो पीठ के ऊपर हाथ रखा, हे मेरे प्रिय पार्थ, मन मुझ में लगाओगे तो परम योगी हो जाओगे, मेरी सेवा में लगे, मेरा आश्रय करोगे तो मेरे बारे में जान जाओगे, कोई संशय नहीं रहेगा। अब कहते हैं ज्ञान और विज्ञान के बारे में मैं कहते मैं, और जब मैं कहते हैं अपनी छाती को ऐसे उंगली से कहते मैं, ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानम, तेरे को मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों वक्ष्यामी बता रहा हूं। वक्ष्यामी का मतलब प्रवचन करने जा रहा हूं, विशेष वक्ष्यामी, विशेष रूप से मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं, इसका अनुभव कराने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं। एक होता है बताना, जब विज्ञान कह दिया, एक जगह प्रभुपाद जी ने कहा ज्ञान का मतलब जानकारी और विज्ञान का मतलब वो साधन जिससे ज्ञान को सार्थक किया जा सके, और वो साधन है भक्ति। वहां विज्ञान का सीधा अर्थ है भक्ति, और भक्ति प्रेम का परिचय। तो ज्ञान विज्ञान मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो भगवान उससे क्या होगा? यज्ञात्वा, अगर तुमने वो जान लिया न ई है इस दुनिया में फिर कुछ और भूयो अन्य और कुछ अन्य जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने ज्ञान और विज्ञान जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये आपने जान लिया जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अनुभव कर लिया, तो फिर इस संसार में और कुछ जानने के योग्य है ही नहीं, न अन्य और कुछ नहीं है। ज्ञातव्यम जानने के योग्य और अविशिष्यते, कोई और अवशेष नहीं बचेगा, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं, पूरे का पूरा तुम जान लोगे। और इसको वैसे कहते हैं यज्ञात्वा, अगर भगवान को जान लिया सर्वज्ञ, सब जान लिया। ये तो उपनिषद का श्लोक प्रभुपाद ने कहा, भगवत को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, भगवान संतुष्ट हो गए तो जगत संतुष्ट हो गया। भगवान की संतुष्टि में जगत की संतुष्टि है, जीव की संतुष्टि है, और भगवान के ज्ञान से जीव का, प्रकृति का और जगदीश का तीनों का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि भगवान परम सत्य है। तो यहां ज्ञान और विज्ञान दो शब्दों को प्रभुपाद ने लिखा है, फिनोमिनल ज्ञान एंड नॉमिनल ज्ञान। अंग्रेजी में शब्द लिखा है फिनोमिनल, फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब है जो आपको दिखता है वो, और नॉमिनल का मतलब है जो असली है। दुनिया में कुछ चीजें हैं जो दिखती हैं और कुछ चीजें हैं जो उनका असली स्वरूप है। एक होता है रेशनल ज्ञान, जिसका मतलब जिसके ऊपर कोई तर्क वितर्क करके किसी चीज को समझा जाए, और एक होता है जैसे सामान्य किताब का ज्ञान। तो किताब का ज्ञान ज्ञान है, और अनुभव की कसौटी के ऊपर परखा हुआ ज्ञान विज्ञान है। तो संसार जैसे दिखता है ये तो फिनामिना है, ये मटेरियल है, ये भौतिक चीजें कैसे दुनिया चल रही है, लेकिन इसके पीछे क्या है, असल में सत्य क्या है इसके पीछे, वो नॉमिनल ज्ञान है। तो ये दोनों ज्ञान और विज्ञान का मतलब ये है कि सामान्य ज्ञान ऐश्वर्य ज्ञान, और विज्ञान का मतलब भगवान का जो भक्तों के साथ प्रेम करता है भगवान, वो ज्ञान। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य रूप से लोगों का जो ज्ञान होता है, प्रायः संसार में कितना ज्ञान है आगे वाले श्लोक में आता है कि संसार में जो जिसको ज्ञान कहते हैं लोग, वो पांच तत्व पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल इनका, और पांच और चीजें शब्द रूप स्पर्श गंध शब्द, बस इतना ही। पूरे विज्ञान साइंस में सारी फिजिक्स पढ़ो, सारा केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ो, ये पांच चीजें हैं कि पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि, और फिर पांच सुनना, आई आवाज कैसे आती है, आवाज की लहरें कैसे है, रूप कैसे दिखता है, प्रकाश कैसे है, बस इन्हीं पांच तत्वों के अलावा और कुछ ज्ञान संसार में नहीं है। इसके पीछे इन तो चलाने वाला कौन है, ये ज्ञान तो किसी को है नहीं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, इसका ज्ञान भी सामान्य रूप से है नहीं। तो भगवान कहते अर्जुन मैं आपको ज्ञान विज्ञान सहित देने जा रहा हूं, और जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता इस दुनिया में है नहीं, और अपने आप में वो परिपूर्ण ज्ञान है। श्री प्रभुपाद जी का इसके ऊपर भावार्थ में बोला, ऐसा ज्ञान किसको भगवान देते हैं, जैसे अर्जुन को कह रहे हैं किसको देते हैं। तब कहते अर्जुन में क्या ऐसी विशेषताएं भगवान ने देखी कि उसको ज्ञान विज्ञान दे रहे हैं। तब चौथे अध्याय से प्रभुपाद जी कहते हैं दो चीजें अर्जुन में भगवान ने देखी, क्या बताया, शिष्यस्त्यहम् न अर्जुन समयात्यद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए तुम इस रहस्य को, इस ज्ञान विज्ञान को समझ पाओगे। तो श्री प्रभुपाद के शब्द हैं कि भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान विज्ञान कौन जान सकता है जो पहले तो भगवान के साथ भक्ति से जुड़ा हुआ हो। जब तक जीव के हृदय में भक्ति का उदय नहीं हुआ है तब तक भगवान को जानना संभव नहीं। और भक्ति कैसे जागृत होती है? चेतना चरितमृत में लिखा है, भक्ति जन्म होइते भक्त संगे। भक्ति की जागृति, भक्ति प्रकट कैसे होगी बोलो? भक्त के संग से। जैसे बीमारी, एक बीमार है टीबी का तो दूसरे को बीमारी लग जाती है, ऐसे ये है बुरी बीमारी संसार की। लेकिन एक अच्छी बीमारी है जिसको भक्त, भक्त के हृदय में भगवान के प्रेम के कीटाणु हैं, उसका संग करोगे तो आपको भी वो भक्ति की बीमारी लग जाएगी। तो भक्ति कैसे जागृत हो? भक्त के संग से। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, न दान से, न पुण्य से, न तप से, न जप से, न यज्ञ से, किसी से भी भक्ति प्रकट नहीं होगी। भक्ति का तो भगवान ने होलसेल का एजेंसी सिर्फ भक्तों को दी है, और किसी, और स्वयं भी भगवान भक्ति नहीं देंगे। भगवान स्वयं भी भक्ति किसी को नहीं देते। भगवान कहते हैं ये मैंने नियम बना रखा है, अगर मैं दूं तो सबको दूं, न तो किसी को नहीं दूं। किसी को दूं, किसी को नहीं दूं तो मेरे ऊपर पक्षपात हो जाएगा। इसलिए भक्ति देने का सारा जो जो विभाग है मैंने भक्तों को दे दिया है, वो जिसको चाहे उसको दे। इसलिए नारद जी भक्ति को कहते हैं भागवत के महात्म में कि देवी भक्ति जिसके हृदय में आप आ जाओ ना, भगवान गोविंद को गोलोक धाम से लाके उसके हृदय में बिठा सकती हो। ये आप में शक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है कि भगवान को हृदय में विराजमान कर सकती है। और जिसके हृदय में भक्ति आती है तो भक्ति के दो फल है वहां। क्या भक्त का, भक्ति का फल है? ज्ञान और वैराग्य। तो भगवत ज्ञान असल में कब आएगा? जब हृदय में भक्ति आएगी तब ज्ञान आएगा, क्योंकि ज्ञान भक्ति का बच्चा है। और जब ज्ञान आ जाएगा तो संसार से अपने आप वैराग हो जाएगा। उससे असल में वैराग का अर्थ छोड़ना कुछ भी नहीं है, भगवान से विशेष राग हो जाए। मई आसक्त का मतलब है वैराग, मुझ में आसक्ति हो जाए मतलब विशेष भगवान में राग हो जाए, राग का मतलब आसक्ति। तो क्या हो जाएगा? आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। भगवान में आसक्ति हो जाएगी तो ज्ञान आ जाएगा। और ये दोनों कहां से आएगा? बोला ये दोनों भक्ति का फल है। बोला भक्ति कहां से आएगी? बोला भक्त के संग से। बोला भगवान मिल जाए फिर भी भक्ति मुख्य अंग है। भक्त से, भक्त के संग में भक्ति मिलेगी और भक्ति से भगवान मिलेगा। भगवान मिलने के बाद भी भक्त का संग मुख्य अंग है। भक्ति दिलाने वाला भी भक्त है, भगवान मिलाने वाला भी भक्त है, और भगवान मिलने के बाद भी भक्त बहुत जरूरी है जीवन में। पूरी भागवत में देखें, ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हो गया ना, फिर भी क्रोध आ गया, यक्षों को मार रहे थे, और भगवान का भागवत स्वयंभू मनु ने आके कहा बेटा लड़ाई मत करो, उनको संग दिया, तब उनके अंदर से क्रोध गया। भगवान के दर्शन के बाद की बात है। बलि महाराज के सामने भगवान खड़े हैं, उनके चरण धोए हैं बलि महाराज ने अपने हाथों से, जिन चरणों से गंगा निकलती है वो अपने हाथों से धोए हैं। फिर भी भगवान कहते हैं बलि महाराज तेरे को प्रहलाद महाराज का संग देता हूं, तेरे को संग देगा। भगवान के दर्शन के बाद संग की जरूरत है। प्रचेता भगवान का दर्शन करके आए हैं, शंकर जी से दीक्षा लेके, शिक्षा लेकर, रुद्र गीत गाकर भगवान का दर्शन करके आए हैं, फिर भी क्रोध आ गया। नारद ने उपदेश दिया तभी संसार से के बंधन से मुक्त हुए। पृथु महाराज भगवान के अवतार भी हैं, अंश अवतार भी हैं, और भगवान उनके यज्ञ में प्रकट हुए ब्रह्मा जी के संग, फिर भी कहे चार कुमारों का संग मिलेगा तभी आपको संसार से भगवान के दर्शन के बाद भी भक्त की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, ये पूरी भागवत में बार बार आएगा। और सब भक्तों ने एक ही चीज मांगी है, जितने भागवत में भक्त हैं उन्होंने एक ही चीज मांगी है। क्या मांगा है? उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। भगवान कहीं भी हम हो लेकिन आपके भक्तों से हमारी मैत्री हो, आपके भक्तों के साथ हमारा स्नेह हो, उनसे उनका मुझे हमको संग मिल जाए, फिर हम कहीं भी होंगे आपको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि भक्त हमारे को आपकी स्मृति सदा कराते रहेंगे। तो सबसे मुख्य जीवन है साधु संग, साधु संग, साधु संग, सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ये सत्संग काय के लिए, भक्तों के संग के लिए, ये उत्सव काय के लिए, भक्तों के संग के लिए, मंदिर काय के लिए, सजातीय भक्तों के संग के लिए। सजातीय भक्त मतलब जो एक भाव वाले भक्त एक जगह इकट्ठे हो। सारी धर्म की व्यवस्था केवल एक चीज के लिए है कि भक्तों का संग मिल जाए। तो भगवान की प्राप्ति का और कोई साधन नहीं है सवाय भक्तों के संग के। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा ज्ञान विज्ञान भगवान किसको देते हैं जिसमें भक्ति का उदय हुआ है। और दूसरा जो एक शब्द है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, भक्ति के साथ भगवान के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए। अगर आपसे अभी प्रश्न पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो उत्तर आपका क्या होगा? कौन है भगवान श्री कृष्ण? आप अगर उत्तर देना चाहें तो क्या देंगे? कोई कहेगा परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण, और कोई कहेगा नन्हा, क्या कहेगा? सर्वशक्तिमान है, भगवद गीता को देने वाला है, तीनों जगतों की उत्पत्ति करने वाला है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला है, ये सूर्य चांद तारे सब उसके इशारे से चलते हैं, सब कुछ भी कहो ये तो ठीक है। लेकिन आपसे जब पूछा जा रहा है कृष्ण कौन है भगवान, तो आपके मुख से जब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक आपके हृदय से ये वे भाव नहीं आएगा कि वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। क्या है वो तो आप जानो, आपका काम जाने, हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। कोई पूछे जाके हनुमान जी के से के राम क्या लगता है, राम कौन है, तो क्या कहेगा? भगवान है। क्या कहेगा? हमारे स्वामी हैं। कोई अर्जुन से पूछे कि कौन है कृष्ण, तो क्या कहेगा? हमारा सखा है, यही कहेगा ना, हमारा मित्र है, ये कहेगा। कोई कहे कि यशोदा से पूछे कृष्ण कौन है, क्या कहेगी? हमारा बेटा है। कोई गोपियों से पूछे कृष्ण कौन है, क्या कहेगी गोपियां? हमारा प्रीतम है, भगवान है, कोई नहीं कहेगा। जब तक ऐसे भगवान के साथ हमने अपने भूले हुए संबंध को जागृत नहीं किया है तब तक भक्ति शुरू ही नहीं हुई। प्रभुपाद जी की जगह तो लोग कहते हैं कभी कभी, एक श्लोक के तात्पर्य में कि जो बहुत कर्मठ होते हैं उनको कर्म योग अच्छा लगता है, मेहनती होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ज्ञान योग, और भावुक होते हैं वो भक्ति योग, और जो साधन संपन्न होते हैं वो ध्यान योग करते हैं। और फिर कहते हैं भक्ति योग तो बहुत आसान है। अरे प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग आसान है तो तुम मुश्किल क्यों कर रहे हो? जब आपको जाना ही है पर्वत की चोटी के ऊपर, तो एक सीधा रास्ता है जिसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें से जा नहीं रहे हो, खड्डे वाले रास्ते से क्यों जा रहे हो? इतनी भक्ति आसान है तो फिर उसको छोड़ के आप मुश्किल रास्ता क्यों पकड़ रहे हो? और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं असल में भक्ति इतनी सरल नहीं है, आपको जो चाहे वो करो वो भक्ति नहीं, जो भक्ति भगवान कहते हैं वो भक्ति तो तलवार की ढाल के ऊपर चलने के बराबर है। भगवान को वश में करना, अजीत को जीत लेना, ये भक्ति का गुण है। जो अजीत भगवान है जीता नहीं जा सकता है, उसको भक्ति से जीता जा सकता है। भगवान अपने आप को भक्त को अर्पण कर देता है, उसको इतना कोई आसान काम होगा क्या? तो भक्ति आरंभ होती है जब भगवान से हमारा संबंध स्थापित होता है, जब हम कहते हैं भगवान से हमारे। और इसलिए दीक्षा काले जब गुरुजनों का शरण लेते हैं तो गुरुजन नाम क्या देते हैं? तुम्हारा नाम है केशवदास। अब भगवान कौन हो गया? केशव क्या हो गया? तुम्हारा स्वामी कृष्ण केशव, और तुम उसके क्या हो गए? दास। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है गोपाल दास। गोपाल भगवान हो गया, तुम उसके सेवक हो। अब देख लो, जब गुरुज के शरण में जाते हैं तो हमारे पीछे दास इसलिए लगाया जाता है कि हम समझ लें कि भगवान स्वामी हैं और हम उसके सेवक हैं, और नहीं तो भगवान के सेवकों के सेवक हैं। और ये सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर भक्त के लिए कहा है कि जब भगवान की पूजा करो, जप करो, सेवा करो, तब अपने आप भूत शुद्धि कर लो। अपने भूत की शुद्धि मतलब शरीर की पहचान की शुद्धि कर लो। बोला कैसे करें? बोला कह लो के मैं वर्ण आश्रम में ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ना न्यासी मैं सन्यासी नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, कौन हो? अपनी पहचान भगवान को कराओ। गोपी भरतहु पाद पद कमलयोर दास 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 अनुदास। मैं तो भगवान श्री गोपीनाथ के भक्तों के भक्तों के भक्तों का सेवक हूं। तुम्हारी ये पहचान जब भगवान तक पहुंचेगी तब समझ लो भगवान कहेगा ये मेरा है। भगवान श्री कृष्ण सीधा कहते हैं अर्जुन को, जो कहते हैं कि कृष्ण का मैं भक्त हूं, वो कहते हैं मैं उसको नहीं जानता हूं। जो कहते हैं मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूं, भगवान कहता है उसको मैं तत्काल अपना लेता हूं। तो भगवान से हमारा संबंध जब जागृत हो जाएगा, भक्तों सीमे सखा चेती, अर्जुन तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो, ऐसे जब हम कहें कि भगवान हम आपके भक्त हैं, आप हमारे स्वामी हैं, और फिर आपके मन में और तीव्र भाव हो जाए तो दास के बाद भक्ति और थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो सखा का भाव आ जाता है, और गंभीर भक्ति हो जाए तो भगवान की पालन पोषण और रक्षा का भाव आता है, तो वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है, और फिर भगवान के लिए सर्वस्व बलिदान करके प्रेम करने का भाव आ जाए तो माधुर्य भाव आ जाता है। ये पांच ही भगवान के साथ हमारे वैसे रस है। पांच में से एक तो है शांत रस, जो भक्त नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन चार रस हैं, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। जब तक ये ऐसा भाव, जगन्नाथ कौन है? हमारे स्वामी हैं, ऐसा भाव निश्चित रूप से भगवान मेरा है, ये मेरापन जब तक नहीं आता है तब तक भक्ति का आरंभ भी नहीं माना जाता है। तो इसलिए भगवान, ये प्रभुपाद जी का शब्द है, ऐसा दिव्य ज्ञान और भगवान का विज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवान के साथ संबंध होता है, और ऐसे संबंध की परंपराएं भगवान ने पहले से ही प्रकट करके रखी है। ये संबंध की परंपराएं, और इन परंपराओं के गति ही भगवान का ये अनुभव का ज्ञान मिलता है। अब इस ज्ञान, ये ज्ञान कितना गंभीर है, कितना दुर्लभ है, उसके लिए ये श्लोक आता है। ये श्लोक है कि ये ज्ञान कितना दुर्लभ है जो भगवान कह रहे हैं। अब इस श्लोक का पाठ कीजिए। मनुष्याणां सहस्रेशो कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चन मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेशु, हजारों में से कोई एक मानव होता है। कश्चित यतति सिद्ध है, यतति, यतति का मतलब क्या है? यतन करता है। और वैसे यति कहते हैं सन्यासी को, यतन करने वाला, इंद्रियों को संयम में रखने वाला, मन को शांत रखने वाला, उसको कहते हैं यति। यति मतलब यतनशील, यतनशील मतलब अपने इंद्रियों को संयम में रखना और मन को शांत रखने वाला, ऐसा व्यक्ति सिद्ध है, वो सिद्धि के रास्ते के ऊपर चलता है। सिद्धि क्या है जीवन में? आत्म साक्षात्कार को सिद्धि बोलते हैं। अपनी पहचान हो जाए, ये सिद्धि हो गई जीवन में। और फिर कहते हैं यदतामपि सिद्धानाम, ऐसे यतनशील आत्म साक्षात्कार किए व्यक्ति हजारों हो, उनमें से कश्चन माम, उनमें से कोई एक मुझको, यानी कृष्ण कहता है मेरे को वेति, जानता है तत्वतः, तत्व से मुझे जानता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको कहते हैं सौ में सूझता नहीं है, हजार में होता नहीं है, लाख में लभता नहीं है, करोड़ में कोई एक, कोटि में कोई एक जो भगवान को तत्व से जानता हो। सौ में सूझता ही नहीं, हजार में होता नहीं, लाख में लभता ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश के देते हुए कहते हैं असंख्य जीव इस धरती के ऊपर हैं, कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ चल नहीं सकते। ये पेड़ पौधे चल नहीं सकते, और कुछ चल सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो चर हैं, उनमें से कुछ नभचर हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, कुछ थलचर हैं, धरती के ऊपर चलने वाले हैं, और कुछ जलचर हैं, जो पानी में रहते हैं। इन तीनों में सबसे अल्प, सबसे कम मानव है। इतने सारे जीवों में सबसे कम मानव है। और फिर महाप्रभु कहते हैं इस मानव में भी आधे तो नास्तिक हैं, भगवान को मानते ही नहीं। पूरी दुनिया में जो मानव की संख्या है, आधे तो नास्तिक है, भगवान को मानते ही नहीं। और आधे जो भगवान को मानते हैं, उनमें भी अधिकांश कर्मी हैं। हम कर्म करेंगे, हम कर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। अरे भाई करो कर्म, काहे के लिए कर रहे हो? कर्म करोगे तो फल भोगना पड़ेगा ना, और फल भोगना पड़ेगा तो भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा ना। तो कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, ऐसे करोड़ों कर्मी जो काम कर रहे हैं सुबह से शाम, उनमें से कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, जो समझता है कि कुछ भी कर लें दुनिया में, सब कुछ यहां रह जाएगा, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, केवल आत्मा नित्य शाश्वत है, उसका बोध कर लेना चाहिए। यह हुआ ज्ञानी। कोटि ज्ञानी मध्य दुर्लभ एक मुक्त, ऐसे करोड़ आत्म साक्षात्कार किया हुआ अहम ब्रह्म अस्मि के स्तर के ऊपर पहुंचे हुए हो, तो उसमें से भी मुक्त कोई एक होता है। कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त, और महाप्रभु फिर कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ऐसे करोड़ जो मुक्त हो गए, उनमें से कोई दुर्लभ एक कृष्ण भक्त होता है। और यहां ये श्लोक क्या कहता है, कोटि में से नारायण प्रायण, भगवान नारायण का शरणागत करोड़ों में कोई एक मुश्किल से होता है। तत्व से मुझे जानता है, भगवान कहते हैं तत्व से जानता है। और ये तत्व शब्द की परिभाषा क्या है, तत्व से कौन जानता है भगवान को? तत्वतः, तत्व है क्या? भागवत में आत्मा है, तत्व क्या है? बोला एक ही अद्वैय भगवान, अद्वैय तत्व भगवान तीन स्तर पे जाना जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व क्या है? एक ही अद्वैय तत्व, उसको कुछ ब्रह्म मानते हैं, कुछ परमात्मा मानते हैं, और कुछ भगवान मानते हैं। तो परमात्मा को जानना ज्ञानियों का लक्ष्य है, और परमात्मा निर्विशेष भगवान का प्रकाश है। परमात्मा को मानना योगियों का लक्ष्य है, जो साधना में बैठ के ध्यान योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, वो अपने हृदय में परमात्मा की अनुभूति करते हैं। वो ये परमात्मा की अनुभूति भी केवल भौतिक जगत में भगवान का अस्तित्व परमात्मा है, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। वहां तो साक्षात नारायण बैठा है, वैकुंठ में नारायण विष्णु बैठा है, वहां क्या करेगा, परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की अनुभूति परम परिपूर्ण अनुभूति है, लेकिन आसान नहीं है। ये श्लोक जो कह रहा है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सूर्य का प्रकाश, ये तो कोई भी कह सकता है सूर्य में प्रकाश है, इसमें कोई मुश्किल है क्या भाई? दिन है, प्रकाश है, ये सूर्य है, ये तो समझना आसान है। और ये भी समझना आसान है कि सूर्य हमारे सर पे, सब कहेंगे सूर्य मेरे सर पे है, तो सबके सर के ऊपर सूर्य तो है ही, और सूर्य को देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, ये भी ठीक है। तो पहला सूर्य प्रकाश है, ये हो गया ब्रह्म का ज्ञान, भगवान प्रकाश है, ज्योति है, ये भगवान हम सबके सर के ऊपर, ये सूर्य हमारे सर के ऊपर है, भगवान परमात्मा हम सबके हृदय में, ये भी समझ में आ गया, देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन समय चाहिए उसके लिए, थोड़ा प्रयास चाहिए। सुबह सवेरे उठ के देखेंगे तो सूर्य को देख सकते हैं, दोपहर को देखने के ऊपर देख भी नहीं सकते, आंखें बंद हो जाएंगी, और रात को देखने का प्रयास करो तो आपके बस की बात नहीं है। अब तीसरा प्रश्न आपसे पूछता हूं, इस सूर्य लोक में इसका एक स्वामी है सूर्य लोक का, जिसका नाम विवस्वान है, उसका रथ है, उसके ऊपर घोड़े हैं, उसकी एक पत्नी का नाम छाया है, एक पत्नी का नाम संज्ञा है, संध्या है, और उसके शनिश्चर उसका बेटा है, यमराज उसका बेटा है, जमुना उसकी बेटी है, अश्वनी कुमार उसके बेटे हैं, और सारवणी मनु आएगा उसका बेटा है, ये कोई भी आजकल पढ़ा लिखा बात मानेगा कि इस आग के गोले में कोई आदमी रहता है और उसकी पत्नी भी है और उसके बच्चे भी है, किसी को विश्वास आएगा क्या? ये विश्वास करना मुश्किल है कि नहीं? सूर्य की रोशनी को समझना ये तो बच्चों का खेल है, बच्चे भी कहेंगे अभी दिन है, सूर्य को बाहर जाके देखना ये भी संभव है, लेकिन सूर्य में भगवान रहता है ये बात मानना आसान है क्या? ये केवल शास्त्र के प्रमाण के ऊपर मानी जा सकती है, और भगवान के वचन है कि मैंने सूर्य को भगवत गीता का ज्ञान दिया, और रामायण में लिखा है कि हनुमान जी 1 वर्ष तक सूर्य से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आए, और उनके रथ के ऊपर बैठने की जगह भी नहीं थी, 60,000 वाल्कल्य ऋषि बैठते हैं और भगवान की स्तुति करते रहते हैं, जगह नहीं है रथ के ऊपर, हनुमान सूर्य देव की तरह मुख रख करके और उल्टे पांव चल के 1 साल में ज्ञान प्राप्त किया, और भागवत के महात्म्य में लिखा है कि गोप कुमार ने अपने भाई दुंधकारी प्रेत की मुक्ति के लिए सूर्य से पूछा क्या करूं, तो सूर्य कोई सामान्य व्यक्ति उससे बात किया सूर्य से जाके, तो ये सूर्य व्यक्ति है, सूर्य नारायण आदित्य, आदित्य है, आदित्य का पुत्र है, सूर्य नारायण उसका नाम है, ये मानना आसान है क्या? रथ लेके चलता है सूर्य, उसका रथ है, कितना मुश्किल है इस बात के ऊपर विश्वास कोई नहीं मानेगा। वैज्ञानिक को पूछे कि सूर्य के अंदर राजा रहता है उसका नाम विवस्वान है, बोले पागल हो गए क्या, वहां जल नहीं जाएगा कैसे रहेगा उधर, तो उनकी बुद्धि ये बात, ऐसे ही भगवान को मानना मुश्किल है। अरे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी 4 वेद जिनके मुख से निकल रहे हैं, 3-3 बार वेदों को पढ़ चुका है, वो श्री कृष्ण को बालों के बीच में, ग्वाल बालों के बीच में बगैर प्लेट के हाथ में दही भात रखा, उंगलियों में आचार रखा हुआ, और झपटते हुए ग्वाल बालों के जूठन खाते हुए देखे, बोलता क्या हो गया है, हम यज्ञ में स्वाहा करके पवित्र साधे देते तो खाने आता नहीं है, और यहां तो खट्टी छाछ भी जो छीन छीन के पी रहा है, ये कौन सा भगवान है? तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी अपने आप को बहुत बड़ा वेदाचार्य मानता है और मेरी इसने समाचार सुना है कि मैं माखन चोर हूँ, ब्रज में घर घर में जाके चोरी करता हूँ, तो दुनिया वालों को मैं दिखा देता हूँ कि मैं तो चलो माखन की और छाछ की दही की चोरी करता हूँ, लेकिन ये छाछ दही माखन देने वाली गईयों के बछड़े चुरा के क्या ये बड़ा चोर है। ब्रह्मा जी को भगवान ने चोर बना दिया और ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के चले गए, पता नहीं लगा ये भगवान है। ब्रह्मा को अगर पता नहीं लगा भगवान है तो हमको कहां से लगेगा। ब्रह्मा जी ग्वाल बाल भी चुरा के गया, बछड़े भी चुरा के गया, सम्मोहित हो गया। तो ऐसे भगवान को मानना इतना आसान नहीं है। अरे भगवान को जानना है तो पांडवों के पास जाके देखो कि कैसे अर्जुन के रथ को हांक रहा है, कैसे युधिष्ठिर का मंत्री बन के बैठा है, संदेश वाहक बन के बैठा है, मैसेज लेके जा रहा है। अरे उनके उनके यज्ञ के अंदर वो जूठे पातल उठाने वाले के काम को संभाल के और आने वाले संतों के चप्पल संभाल के रख रहा है, ऐसा भगवान कहीं मिलेगा क्या दुनिया में? किसी वेद शास्त्र में, किसी मजहब में ऐसे भगवान का वर्णन है क्या? इतना प्रेम स्नेह करने वाला भगवान ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये भगवान को जानना इतना आसान नहीं। ये भगवान कहते हैं मुझे तत्व से जानना आसान नहीं है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ये मेरे भगवत भगवान का ज्ञान दे रहा हूं, ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूं। फिर भी लोग लिखते हैं गीता के ऊपर ब्रह्म परमात्मा ने नमः, अरे कहां लिखा है? वो कहता है मेरे को नमस्कार करो, वो कहता है मुझे नमस्कार करो, हम जबरदस्ती कहते हैं परमात्मा को नमस्कार करो। जो भगवान ने कहा है वो लिखो ना। भगवान को जानना और मानना ये केवल शास्त्र और साधु के शब्दों के ऊपर विश्वास करने से संभव है, अपनी बुद्धि से नहीं हो सकता है। तब भगवान कहते हैं ये जो मैं तो आपको ज्ञान देना चाहने वाला हूं ये दुर्लभ ज्ञान है, क्योंकि ये भगवत तत्व का ज्ञान है, ये मेरे साथ संबंध का ज्ञान है, ये मुझसे भक्ति करके प्रेम से संबंध स्थापित करने वाला ज्ञान है। ये ज्ञान आपको करोड़ों में किसी एक में तत्वतः, और इस तत्व के लिए भगवान ने चौथे अध्याय में कौन सा श्लोक कहा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः। जो तत्व से मेरे अवतार को जानता है, मेरी लीलाओं को जानता है, फिर उसको उसी अध्याय में कह दिया तद्विधि प्रणिपाते न परिपर्शने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शन। वो तत्वदर्शनी महात्मा ही आपको ये बता सकते हैं। और फिर चेतन चरित में तो कहा कि वा विप्रा कि वा न्यासी, जो कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। कृष्ण तत्ववेता यह लिखा क्या शब्द है? वेती तत्वतः, माम वेती तत्वतः। माम कौन बोल रहा है ये श्लोक? ये श्लोक कौन बोल रहा है भाई? श्री कृष्ण बोल रहा है ना, तो माम की जगह कृष्ण रखो फिर क्या हो जाएगा? कृष्ण तत्ववेता, कृष्ण तत्ववेता, कृष्ण वेती तत्वतः, कृष्ण तत्ववेता। और वहां क्या लिखा है चेतना चेतनांत में? कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुए, जो कृष्ण के तत्व को जानता है। माम वेती तत्वतः, माम को कृष्ण करो तो कृष्ण तत्व को जानने वाला, कृष्ण तत्व को जानने वाला। कृष्ण तत्व क्या है, क्या रहस्य है कृष्ण तत्व का? इसका समाचार सिर्फ पांडवों से मिल सकता है और कहीं से नहीं मिलेगा, जिन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व माना है, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। कैसे है पांडव? बोला जिस दिन युधिष्ठिर महाराज को यह समाचार अर्जुन से मिला कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए हैं, अपना मुकुट उतार के नीचे रखा, ये राज हमको नहीं करना है, कृष्ण ने दिया था उनका राज कर रहे, वो नहीं रहे तो हमको भी नहीं रहना है, राज को तुच्छवत त्याग दिया। उस चेतना महाप्रभु के अनुयायी सनातन गोस्वामी रूपा गोस्वामी मंडलपति तुच्छवत, बड़े बड़े मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे नवाब हुसैन शाह के, और कृष्ण तत्व का जैसे भी महाप्रभु से जानकारी मिली वो सब पद प्रतिष्ठा तुच्छवत पीछे छोड़ के आ गए। और वृंदावन के अंदर पेड़ के नीचे 3 दिन भी एक पेड़ के नीचे नहीं रहते, और इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण के तत्व का निरूपण भक्ति रूप के माध्यम से करके गए हैं कि लोग आज उन शास्त्रों को पढ़ के, श्री प्रभुपाद ने उन शास्त्रों का पूरे विश्व को अवलोकन कराया है, दर्शन कराया है, ऐसे इनको कहते हैं तत्ववेत्ता महात्मा। तो ये इस ज्ञान की महानता है। ब्रह्म को जानना, परमात्मा को जानना अधूरा ज्ञान है। ब्रह्म जाने का मतलब भगवान के सत्य भगवान है ये जानना, परमात्मा जानने का मतलब है भगवान चित्त है ये जानना। लेकिन आनंद का अनुभव केवल तब होता है जब भगवान को जानेंगे। ब्रह्म सत्य, परमात्मा चित्त, लेकिन आनंद जो सच्चित आनंद है, आनंद केवल भगवान को जानने से भक्त को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो आनंद की अनुभूति का और कोई साधन नहीं। अब भगवान इस ज्ञान का परिचय देते हैं। भाई आखिर ये इतनी देर कहते हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा में आप जाके देखें, रेवाखंडे स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण की कथा, इसने सुनी इसके घर में ऐसे हुआ। अरे कथा क्या थी, वो तो है ही नहीं। सत्यनारायण की कथा क्या है वो लिखी नहीं है। इसने सुनी इसको ये फल, इसने सुनी इसको ये फल, वो कथा क्या है पता नहीं, आज तक पता नहीं। आप पूछ लो पंडितों से, कहेंगे ये लिखा है इसने सत्यनारायण की कथा में, ये फल मिला ये फल मिला, कथा क्या है। कथा तो भागवत ही कथा है, वो सत्यनारायण वही है, उसको सत्य कहा गया, सत्यम परम धीमहि। लेकिन ये पता नहीं है, वो सिर्फ उससे लाभ क्या हुआ उसी की कथा करते। तो ऐसे अब भगवान इस ज्ञान का परिचय दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। तो पहला श्लोक ये बोल रहे हैं, बोलिए आप, भूमो आपो अनलो वायो खम मनो बुधिर एवचा अहंकार इति यम ये मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पहले ज्ञान का परिचय करा रहे हैं जगत का, पहले जगत का कराएंगे, फिर जीव का कराएंगे, और फिर अपना जगदीश का कराएंगे। पहले मोटी शे का कराएंगे, जगत में क्या है, बोला 5 चीजें, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि, ये 5 चीजें हैं। और 3 क्या है, तब कहते मन बुद्धि और अहंकार, और ये 8 मेरी, कहते मेरी भिन्न प्रकृति है। भिन्न, भिन्न प्रकृति का क्या अर्थ है मेरी शक्ति लेकिन भिन्न है, मतलब मुझसे अलग है। ये ऐसे है जैसे अब हम यहां सत्संग कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब 10 दिन के बाद कोई इस रिकॉर्ड को घर में सुने तो आवाज तो कथा का सत्संग का तो हमारा आवाज है, लेकिन हम तो वहां नहीं है ना। तो ये मेरी वाणी भिन्न शक्ति है जो वो सुन रहा है, वहां उसको ये मेरा चेहरा नहीं दिखेगा या मेरा अर्थ इसका नहीं समझ में आएगा, कैसे मैं बोल रहा हूं कहां बैल रहा हूं उसने नहीं देखा नहीं है, केवल मेरी शक्ति को भिन्न मुझसे अलग मेरी शक्ति को देख रहा है, वो मेरी शक्ति है। ऐसे और कई जगहों पर मैंने अर्थ किया होगा लेकिन ये एक अर्थ उसको हाथ आ गया, तो ये मेरी भिन्न शक्ति हो गई। एक उदाहरण और आश्चर्यजनक उदाहरण है, प्राय लोग कहते हैं कि भगवान ने जगत बनाया है तो फिर जगत में इतना सारा उपद्रव क्यों है, झगड़ा क्यों है, परेशानी क्यों है, भगवान ने बनाया है तो अच्छा होना चाहिए ना। और प्रभुपाद से एक बहुत सुंदर नवयुवक लड़की ये प्रश्न पूछने लगी कि श्री प्रभुपाद को कह रहे कि स्वामी जी, इफ गॉड हैज मेड वर्ल्ड व्हाई देयर इज एविल इन द वर्ल्ड, भगवान ने दुनिया बनाया है तो इसके अंदर इतना उपद्रव क्यों है, इतना सारी शैतानी क्यों है। तो प्रभुपाद ने उसकी ओर देखा, बोला तुम कितनी सुंदर लड़की हो, फिर तुम जो मलमूत्र त्यागती हो वो खराब क्यों है। वो लड़की तो बेचारी परेशान हो गई कि भाई तुम कितने सुंदर हो लेकिन तू जो मलमूत्र त्यागती हो स्टूल वो कितना खराब है। और कहा वो तुम्हारी सेपरेटेड एनर्जी है, वो तुमसे अलग हो गई, तुमसे अलग हो गई इसलिए वो इसका ये हाल हो गया, जब तक तुम्हारे अंदर थी तब तक ठीक थी, बाहर गई तो ऐसे हो गई, तो ये भिन्न प्रकृति भगवान से अलग हो गई, इसलिए इसके अंदर ये सारा झमेला है। भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये सारा भगवान से भिन्न हो गई। भगवान के अंदर जब है तो कोई समस्या नहीं, तो इसको भिन्न प्रकृति कहते हैं। ये भगवान की भिन्न प्रकृति है। ये कहां से आती है? बोला ये महत्तत्व से आती है। ये महत्तत्व ये क्या है जिससे ये पूरी प्रकृति बनती है, जगत बनता है, वो महत्तत्व से बनता है। और महत्तत्व का आत्मा कौन है? महत्तत्व को कौन जीवित करता है? वो तो जड़ है, उसको कौन जागृत करता है? तो कहते हैं उसके ऊपर दृष्टि डालता है। कौन दृष्टि डालता है? पहला महाविष्णु दृष्टि डालता है, करुण दक्षाय विष्णु महत्तत्व के ऊपर दृष्टि डालते हैं। तो महत्तत्व का परमा आत्मा है करुण दक्षाय विष्णु। और फिर एक ब्रह्मांड का आत्मा कौन है? बोला गर्भो दक्षाय विष्णु। उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं तब सृष्टि होती है। और फिर हरेक के हृदय में कौन है परमात्मा? तो कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। प्रभुपाद का तात्पर्य इन तीन विष्णु के ऊपर है। ये भगवान के तीन पुरुष अवतार सृष्टि के कार्य के लिए है। तब ये सिद्धांत समझ लीजिए, सृष्टि करना भगवान की करुणा है, कृपा है। सृष्टि भगवान क्यों करते हैं? बोला ये भगवान दया करते हैं, करुणा करते हैं, सोए हुए प्रलय काल में जीव को जगाते हैं और एक और अवसर देते हैं, एक और चांस देते हैं, एक और सौभाग्य देते हैं कि वो सत्कर्म करके भगवत धाम जाए। एक बार गलती किया और सारी उम्र के लिए नरक में पड़ा हो, एक बार अच्छा काम करे सारी उम्र स्वर्ग में पड़ा हो और कभी दूसरा उसको मौका नहीं मिले, तो भगवान न्यायकारी नहीं कहा जाएगा। चांस तो देना चाहिए ना। तो प्रलय काल में सोए हुए जीवों की सृष्टि करना भगवान की करुणा है। और यह सृष्टि भी भगवान की लीला है, इसको कहते हैं सृष्टि लीला। और यह भगवान की ऐश्वर्य लीला है, भगवान की माधुर्य लीला है रास लीला, और भगवान की ऐश्वर्य लीला है सृष्टि लीला। और यह सृष्टि भी भगवान की लीला है और यह करुणा की लीला है। तो जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो श्री कृष्ण अपने सीधे हाथ से, राइट साइड से बलराम जी को प्रकट करते हैं। और बलराम जी अपने आप को चार में विभाजित करते हैं, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकृष्ण। और इनमें जो महासंकृष्ण है वो पांच में भगवान की सृष्टि के कार्य के लिए अपने को विस्तारित करते हैं। तो बलराम जी संकृष्ण के माध्यम से पांच रूपों से सृष्टि का भगवान का कार्य करते हैं। कृष्ण से बलराम, बलराम से संकृष्ण, संकृष्ण से तीन विष्णु, कारण सागर में शयन करने वाला, गर्भ सागर में शयन करने वाला और क्षीर सागर में शयन करने वाला विष्णु, और एक स्वयं अनंत जो पृथ्वी को अपने शेष धारण करता है। ये पृथ्वी किसके ऊपर है? भगवान शेष के फणु के ऊपर धारण की हुई है। और पांचवा भगवान के अवतार काल में राम जी के साथ लक्ष्मण होके आते हैं, कृष्ण के साथ बलराम होके आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद होके आते हैं। ये भगवान की लीला के सहायक है जगत के अंदर। तो ये पांच रूपों में भगवान के राइट साइड से, ये हुई सृष्टि लीला राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से भगवान की रासलीला होती। लेफ्ट साइड के भगवान के वाम भाग से भगवान अपने से राधा रानी को प्रकट करते हैं। और राधा रानी अपनी काया के व्यू से और गोपियां बनाती है, क्योंकि रस के लिए एक नहीं अनेक चाहिए। तो सारी गोपियां राधा रानी का काया व्यू है, काया का मतलब शरीर है, उन्होंने अपने आप को इतनी गोपियों के रूप में विभाजित किया है अथवा विस्तारित किया है। और जितनी लक्ष्मियां वैकुंठ में है वो सब राधा रानी का कला है, कला है का मतलब उसका अंश है। और जितनी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की रानियां हैं वो सब बिंब है, राधा रानी का बिंब। बिंब का मतलब जैसे आईने में देखते हैं ना तो अपना बिंब दिखता है, ऐसे बिंब है। तो ये जितनी भी भगवान की रास प्रेम की लीला माधुर्य लीला का जितने भी प्रसंग है ये सब भगवान कृष्ण के वाम भाग का विस्तार है राधा रानी के माध्यम से। और जो सृष्टि कार्य और सृष्टि में अवतारों का जो कार्य है विष्णु तत्व का, ये सब बलराम जी से विस्तार। और भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो बांसुरी बजाते रहते हैं। ये काम दोनों दोनों तरफ से अपने आप होता रहता है, एक तरफ से शक्ति का विस्तार होता है और एक तरफ से विष्णु तत्व का विस्तार होता है। तो यहां हमारे को जगत का परिचय दे दिया, अब एक श्लोक पढ़ते हैं जिसमें भगवान अब जीव का परिचय देते हैं। आइए पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। अपरेयम् इतस्त्वान्याम् प्रकृतिम् विधीमे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। कल की क्लास में एक एक गीता अपनी सब लेके आ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि भगवत गीता का अपना खोल के श्लोक बैठेंगे पढ़ेंगे तो लगेगा कि आपका भगवान के साथ गीता के माध्यम से संबंध स्थापित हो रहा है। जब भाग्यशाली के पास है अपनी लाना, और नहीं है तो एक एक ले जाना और ले जाके अपना नाम लिख के अपने साथ रख दो। ये गीता का अध्ययन आप समझ लो कि आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य कमाई है, बाकी संसार की कमाई यही रह जाएगी, लेकिन ये कमाई आपके साथ जाएगी। ये जो कमाई है गीता के अध्ययन की, ये असल में आपकी सही कमाई है, इसलिए इसका अध्ययन अच्छी तरह से करने का सौभाग्य आपको प्राप्त करा रहे हैं ये भक्त भगवान जगन्नाथ, तो इसका लाभ लीजिए। अब इस श्लोक में शब्द क्या, अपरेयम इतस्तु अन्याम, इससे परे मतलब जगत से परे, इन आठ चीजों के प्रकृति से परे, अन्याम एक दूसरी है प्रकृति में, मेरी प्रकृति है वो भी मेरी प्रकृति है मतलब शक्ति है, वो कैसी है, बोला पराम, वो परा है, ये अपरा है, जगत अपरा शक्ति है, नीचे की शक्ति है वो परा है। क्यों, बोला वो चेतन है, जगत जड़ है, वो मेरी शक्ति चेतन है, कॉन्शियस है, और ये जगत अनकॉन्शियस है, जड़ है, ये जड़ जगत है, ये अपराशक्ति है, और मेरी पराशक्ति वो चेतन है, वो क्या है, जीव भूतां। जीव शब्द तक तो ठीक है, जीव आत्मा, लेकिन भूतां कह दिया, और भूतां कहने के बाद ये जरूर कहना पड़ गया ये यदम धार्यते जगत। इस जगत में जब आते हैं तो ये सब पांच भूतों का शरीर धारण करते, तो जीव भूत हो गया। हम सब भूत हैं एक दृष्टि से क्योंकि ये पांच भूतों का शरीर हमने धारण किया है तो जीव भूत हो गए। एक को कहा कि तुम मंत्री बन जाओ भाई, बोला नहीं बनूंगा, बोला क्यों, बोला 5 साल के बाद उतारेंगे फिर मेरे को भूत लगेगा, बोलेगा भूतपूर्व मंत्री, तो मेरे को भूत नहीं लगना है, ये भूत लग जाए तो ये खराब बात है, मुझे भूत नहीं चाहिए। कोई गीता पढ़ के आया था कि जीव को भूत लगता है तो फिर जीव बंधन में पड़ जाता है, तो जीव को भूत नहीं लगना चाहिए, जीव शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। और शुद्ध अवस्था तो दो प्रकार के जीव है, आप याद कर लीजिए, आज एक को जीव भूत कहते हैं, दूसरे को ब्रह्म भूत कहते हैं। जीव भूत संसार के बंधन में पड़ा हुआ जीव है और ब्रह्म भूत मुक्त जीव है। तो दो प्रकार के जीव 15वें अध्याय में आएगा, दिवाओ इमाओ पुरुष लोके क्षर चा अक्षर एवचा। इस लोक में दो प्रकार के जीव है, एक क्षर है, इसका मतलब जीव जिनको भूत लगा हुआ है जो बार बार जन्म लेते हैं, और दूसरा अक्षर है, वो ब्रह्म भूत है, वो मुक्त है, उनको जन्म नहीं लेना पड़ता बार बार। तो दो जीवों की शरणियां हैं, हम जीव भूत हैं और जो मुक्त आत्मा होते हैं वो ब्रह्म भूत कहलाते हैं। तो अब क्या किया, ये है तो परा लेकिन इसको लगा है भूत, और ये भूत कहां से लगा है? अर्जुन को कहते तुम महाबाहो इस भूत को उतारो, तुम्हारे को भगवान ने बड़ी शक्ति दी है ना, तो इस भूत से जान छुड़ाओ। भूत से जान छुड़ाओ का मतलब ये भूत के इशारे से काम मत करो, मेरे इशारे से काम करो। अभी तुम भूत के कारण इन शरीरों के लिए रो रहे हो, ये सब तुम्हारे रिश्तेदारों के शरीर है, भूतों के लिए रो रहे हो। एक आदमी डूब रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं डूब रहा है आदमी, लेकिन उसको उसको कोट पहना हुआ है जिसके ऊपर 2 किलो सोना है, 2 किलो सोने का उसके ऊपर कोट पहना हुआ है, कुर्ता है, वो डूब रहा है। तो अब आप किसको बचाओगे, आदमी को बचाओगे कि कोट को बचाओगे? हाँ, 2 किलो सोने वाले कोट को बचाने वाले ज्यादा निकलेंगे, आदमी को बचाने वाला कोई एक आधा होगा। तो अर्जुन ने अभी तक जो है वो कोट बचाने की बात कर रहा, भूतों की रक्षा की बात कर रहा था, जीवों की रक्षा की बात नहीं समझ रहा था। अर्जुन की समस्या ही यही है, ये सब मर जाएंगे, रिश्तेदार हैं, फिर मैं किसके ऊपर राज करूंगा। तो ये हो गया जीव भूत। तो भगवान अर्जुन को जीव भूत से ब्रह्म भूत के स्तर के ऊपर लाने का शिक्षा दे रहे हैं। और ब्रह्म भूत मुक्त को कहते हैं, और मुक्त के बाद भक्ति शुरू होती। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति, मेरी पराभक्ति, यहां भी पराजीव है वहां पराभक्ति है, वो मुक्ति के बाद शुरू होती। मुक्ति के बाद मेरी भक्ति शुरू होती है, इसलिए कहा कोटि मुक्त मध्य एक दुर्लभ कृष्ण भक्त। तो ये जीव क्या कर रहे हैं, धार्यते जगत। इन जीवों के भूत लगने के कारण इस जगत की व्यवस्था की गई है ताकि इन जीवों को इसमें रहने का मौका दिया जाए। धारण किया जीवों के लिए, जीवों ने ये जगत धारण किया है, मतलब ये शरीर प्रकृति से धारण किया है। ये शब्द कहां आया है, 15वें अध्याय में, ममई वंश जीव लोके, मेरा अंश जीव है। वहां जीव अलग कर दिया, ममई अंश जीव लोके, फिर कह दिया जीव भूत। ये जीव जो है ये सनातन है मेरा, लेकिन इसको भूत लगा है। कहां से लगाए, बोला मनस प्रकृति, मनस इष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी। ये प्रकृति से, जगत से इसको मन और 5 इंद्रियां ये मिला के 6, ये है इसके ऊपर भूत, ये इसको लग गया है, इसलिए ये मुझे नहीं पहचानता है, ये इसको भूत लगा हुआ है, ये भूत उतारना है। असल में ये सारी कथा भूत उतारने की, भूत का मतलब अपनी पहचान भूल जाना, भूत की भाषा बोलना। सबको भूत लगा हुआ है, मतलब अपने को नहीं पहचान रहे हैं, मैं भगवान का हूं ये भूल गए, मैं संसार का हूं ये जान रहे हैं, क्योंकि संसार ने शरीर दिया है और शरीर के नाते अपने आप को संसार का बना दिया, और आत्मा भगवान का अंश है वो भूल गए। जो जिस चीज का अंश है वही जाएगा, ये दुनिया का नियम है। यह कथा को विराम देंगे, 7 बज रहा है। जो जिसका अंग है वो वही जाएगा, शरीर प्रकृति का अंग है, प्रकृति की ओर जाएगा, और जीव भगवान का अंश है, जीव भगवान की ओर जाएगा। इसको बोलते हैं अनन्य अंशित्व, अनन्य अंशित्व, अनन्य भोक्तित्व, अनन्य अहरत्व, अकार त्रयी संपना महाभागवत उच्यते। महाभागवत पुरुष वो है, सब वह संप्रदाय मानते हैं, जो अनन्य अंशत्व अपने आप को मानता है कि मैं भगवान का अनन्य अंश हूं और किसी का अंश नहीं हूं, किसी देवता का अंश नहीं हूं, संसार का अंश नहीं हूं, भगवान का अंश हूं। और जिसका जो अंश होता है वही जाता है। ये पत्थर है, ये मिट्टी है, ये धरती का अंश है, आप कहीं भी फेंको वापस धरती के ऊपर आएगा। आग जलाओ उसकी लौ हमेशा ऊपर जाएगी, क्योंकि सूर्य का अंश है, वो नीचे नहीं जाएगी। पानी कहीं भी गिराओ तो समुद्र की तरफ जाएगा, क्योंकि समुद्र का अंश है। जो जिसका अंश है वही जाएगा। तो जीव भगवान का अंश है, वो जब भगवान की भक्ति करेगा तभी आनंद का अनुभव करेगा, तभी जीवन में सफलता आएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।